سلام شہیدو سلام شہیدوں کا لہو یہ کہہ رہا ہے بہت نزدیک پھر ایک کربلا ہے۔
قابل احترام علماء کرام اور معزز حاضرین اور سامعین اور مہمانان گرامی، شہید کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اختتامی کلمات مجھے ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ کہ ہم چاہتے تھے کہ علامہ صاحب اپنے ایکسپیرئنس اور تجربے کی بنا پر کوئی نہ کوئی ہمیں لائحہ عمل دیتے ان شہداؤں کی شہادت کے حوالے سے۔ بہرحال حضرات گرامی، ہم شہیدوں کے دن منا رہے ہیں اور اس فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ کاش کہ ہماری آرزوئیں یہی ہیں کہ اس فہرست میں ہم بھی شامل ہوں۔ شہید خدا کی نزدیک کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم جیسے لوگ اگر سمجھنا کوشش کریں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ کوئی تیر، کوئی بھالا، کوئی تلوار، کوئی تبر، کوئی بم کسی کو شہید بناتا ہے تو جیسے باطل میں بھی ہمیں ایسے ہی مقتولین نظر آتے ہیں۔ لہذا کسی کے اس انداز سے مر جانے کو شہید کہا جائے یہ تو ممکن نہیں، بلکہ شہید کی اس زندگی کو دیکھا جائے کہ اگر وہ سبیل اللہ پہ گزری تو پھر کسی بھی انداز میں موت آئے وہ شہید ہے۔ جیسے کہا کہ جیسے کہ محمد و آل محمد سے جو محبت کرتا ہے، من ماتا آل محمد ماتا شہیدہ، وہ کسی بھی طرح مارا جائے شہید ہے۔ شہید پرور معاشرے کو جنم دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے شہداؤں کو دینا شروع کیا اور شہید پرور معاشرہ بنایا، نہ شہیدوں کے بچوں کے ساتھ یتیموں جیسا سلوک کیا، تو پھر یہ معاشرے میں شہادتیں کسی رخ اختیار کریں گی، کسی ہدف کی طرف جائیں گی۔ جس طرح امام شہداء امام حسین ابا عبداللہ الحسین، انہوں نے اس حالات میں اپنے آپ کو اس کام کے لیے آمادہ کیا اور تمام لوگوں سے کہا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ مگر سوچا جائے تو کیا موت کے علاوہ کوئی اور راستہ تھا؟ تو امام حسین نے خود کہا کہ میرے پاس صرف دو ہی راستے تھے، ایک ذلتوں کی طرف جا رہا تھا اور ایک شمشیروں کی طرف جا رہا تھا، اور پھر کہا احاط من الذلہ، ہم سے ذلت دور ہے۔ بس اسی کے پیروکاروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اس پورے ماحول کو کس طرح سے تبدیل کیا جائے۔ آج اس کی ضرورت جتنی پاکستانی اقوام کو ہے کہ وہ سیاست کے اس حالات کو سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوا سن 63 سے لے کر 1963 سے لے کر اب تک ہم نے کئی شہادتیں دیں، تو کیا اس قوم کو کوئی ایک جہد ملی یا نہیں ملی؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جس سے ہم جہد مانگ رہے تھے وہی رہبر رہزن بن گئے ہوں اور انہی نے ہمارے ساتھ وہ راستہ جو بالکل صراط مستقیم کی طرح تھا ہمیں بھٹکا دیا گیا ہو۔ بہت کوشش کریں کہ شہیدوں کے اس راستے کو سمجھیں۔ جب شہید کے اس انجام کو آپ دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس انجام سے ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں۔ تو شہیدوں کی یاد کو منانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس انجام سے گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ سمجھ جائے کہ اگر ہمارا انجام بھی ایسا ہی ہوا تو پھر ہماری عزت اور اکرام بھی ایسی ہی ہوگی۔ اور یہ عزت شہیدوں کو کس نے دی ہے؟ یہ خداوند تعالیٰ نے دی ہے اور کہتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو ہم رزق دے رہے ہیں۔ بس اسی کے دستکان پہ ہمیں پہنچنا ہوتا ہے، اسی کے میزر میں ہمیں پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ یقیناً یہ جو رزق مل رہا ہے وہ پاکیزہ رزق ہے۔ وہ پاکیزہ رزق اگر ہمیں مل جائے تو پھر ہم بھی پاک ہو جائیں گے۔ ये जिस्म इस काबिल हो जाएगा जैसे ये टाइटल मिले कि वो शहीद कहलाए। शहीद सबसे बड़ा रुतबा है, सबसे बड़ा रुतबा। बस हमें भी चाहिए कि हम इस रुतबे की जानिब कुछ काम करें। ये बैठे बैठाए तो नहीं मिलना, ये बुजुर्गों के हिस्से में तो नहीं आना, ये जाहिलों के हिस्से में तो नहीं आना, ये झूठों के हिस्सों में तो नहीं आना, ये जालिमों के हिस्से में तो नहीं आना। बस हमें भी चाहिए कि हम हमारे अंदर वो फजीलतों को जन्म दें, और जब फजीलतें हमारे अंदर परवान चढ़ जाएं तो फिर खुदावंद ताला भी हमें वो रुतबा अता करे जिस रुतबे के वो हर कोई इंसान चाहता है कि वो हमें मिले। शहीद हो जाना मसलन आमादा शहीद ना हो, उसे पता ना हो यहीं पे कोई बम ब्लास्ट हो जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक बात कहते भी है ना कि यार शहीद तो हमें भी होना है, मगर सुना है कि लोग जान से मार देते हैं, तो ऐसे भी बैठे होते हैं ना। तो ये चीज शहीदों के लिए इफ्तिखार की बायस नहीं है। बस मसला ये है कि इस माशरे के अंदर क्या हुआ जो हमें इतने सारे शहीद देने पड़े, और इतने सारे शहीद देने के बावजूद हमें ये बात समझ में नहीं आई कि हमने ये शहीद क्यों हुए, क्या वजूहत थी। एक वजूहत जो समझ में आती है वो ये है कि ये सब के सब शहदा और ये मिल्लत, इस मिल्लत को हम मिल्लत जाफरिया के नाम से जानते हैं, ये तरफदार है उस निजाम विलायत और इमामत की, और उसी वजह से इन्हें ये सब कुछ देखना पड़ा। ये विलायत और इमामत का मनसब कैसे नाफिज होता ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था, तो किसी बुजुर्ग ने हाथ पकड़ के इस दौर में इस निजाम को नाफिज करके बताया कि ये किताबों में मौजूद नहीं है बल्कि इसका निफाज भी मुमकिन है। और इसने ललकारा उन तमाम निजामों को जो इससे पहले भी दुनिया में मौजूद हैं और अभी भी चल रहे हैं। बस पाकिस्तान के अंदर मुश्किल यह है इस मकतब जाफरिया की भी कि इसने इस निजाम को सही तरीके से दरक नहीं किया और उस निजाम की तरफ हलूल करना चाहती है जो निजाम फ्रांस से आया है। बस निजाम फ्रांस और निजाम विलायत में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। लिहाजा हमें तरफदार होना चाहिए, हमें पैरो होना चाहिए निजाम विलायत हो इमामत का, और यही सबब बनेगा अगर हम एक सिमत में चलें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी मुश्किल ये आ रही है, जैसे कि अल्लामा साहब ने भी इस तरह इशारा किया कि एक मुश्किल ये आ रही होती कि ये कौन करे और क्यों करे, क्यों उठे। ये जो भी उठेगा इसका अंजाम क्या ऐसा ही होगा जैसे शहदा का अंजाम हुआ, तो हमें घबराहट होती है, हम महसूस करने लगते हैं कि नहीं ये तो बड़ा अजीब संगीन अंजाम हुआ। ना ना, उस अंजाम से डरे नहीं, उस अंजाम से खौफजदा ना हो। जिस तरह करबला से कुछ सबक हासिल करना होता है और कुछ इबरतें पकड़नी होती है, तो जहां से सबक हासिल करना होता है वहां से इबरतें ना लें, और जहां से इबरतें हासिल करनी होती हैं वहां से सबक ना लें। बस जब समझ में कुछ ना आए कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये सियासत है क्या चीज, इस सियासत तो बहुत बुरी चीज है जैसे इस वक्त माशरे के अंदर राइज है कि ये सियासत करते हैं, ये सियासत करते हैं, सियासत को एक गाली बना दिया गया है। मगर किसी ने तो इसी दौर में कहा कि सियासत ऐन इबादत है, ऐन इबादत है सियासत। तो गाली किसी ऐसे ने बनाई है ना जो चाहता था कि बनीनो इंसान के मसाइल हल ना हो, बस छोटे छोटे तंजीमों में तकसीम करना, उम्मत को तकसीम करना, ये एक दुश्मन है खुदा का सबसे बड़ा हरवा है। इसका दिल कहीं ठंडा नहीं होता, ये कभी बहुत बड़ी उम्मत को टुकड़ों में बांटता है किसी और नाम से, कभी शिया कहलाते हैं, कभी सुन्नी कहलाते हैं, कभी वहाबी और देवबंदी और बरेलवी कहलाते हैं, और फिर बांटता है उसका जी नहीं भरता तो उनके भी कई कई हिस्से बांट देता है, और मकतबे जाफरिया भी इससे मुस्तस्ना नहीं है, इसे भी किसी को मातमी कह रहे हैं, किसी को सजदई कहते हैं, किसी को इनकलाबी कहते हैं, किसी को विलायती कहते हैं, ना जाने कितने नाम रखे हुए हैं। बस ये तकसीम करने की एक साजिश है। और अगर इस मिल्लत को, इस जवानों को अगर कोई जहद चाहिए तो ये अजम करें कि हमें वहदत चाहिए। वहदत के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। वहदत अगर आ जाए तो फिर यकीन जानिए कि सारे मसाइल हल हो जाएं, सारे मसाइल हल हो जाएं, सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। वहदत उम्मत की बात कर रहा हूं, छोटी छोटी टोलियों में ना बटे हम, छोटे छोटे ग्रोहों में तकसीम ना हो। इसी तरह शहीद भी किसी ग्रोह का शहीद नहीं होता, किसी कबीले का शहीद नहीं होता, किसी खानदान का शहीद नहीं होता। हर कोई ग्रोह चाहता है कि ये शहीद हमारा है, ये शहीद हमारा है, ये शहीद हमारा है। ये शहीदों के साथ जुल्म है। शहीद खुदा की तरफ है, वो बारगाह अजल में पहुंचा हुआ है और उसको वो टाइटल सिर्फ खुदा ने दिया है क्योंकि वो सबीलुल्लाह पे मारा गया है। बस इन शहीदों की शहादतों से फायदा रखना और फायदा उठाना ये उलमाओं का काम है। ये उलमा इस उम्मत को जहद दें, समझाएं, ना इनमें नफरतों का बीज बोएं बल्कि इसमें उल्फतों का बीज बोएं, इसे मोहब्बतों से संभालें। आप यकीन जानिए हम आज तमाम शहदाओं को याद कर रहे हैं, मगर क्योंकि शहीद मुजफ्फर किरमानी से हमारा करीबी लगाव है, ये जवानों का एक सरदार था, इसने जवानों के साथ जिंदगी गुजारी, अपने से भी कम उम्र के लड़कों के साथ जिंदगी गुजारी, उसे शऊर दिया और एक ऐसा शऊर दिया जिसमें बुजदिली नाम की चीज नहीं थी, जिसमें झूठ नहीं था, जिसमें सिर्फ सिर्फ इखलास भरा हुआ था, उसने इस जवानों को दिया। हम आज मुजफ्फर किरमानी के दिन को तो मना रहे हैं मगर मुजफ्फर किरमानी के उन्वान से नहीं मना रहे, इसीलिए हमने यौम शहदाए पाकिस्तान रखा। इसका तमाम शहदा इसमें शामिल हैं, मुजफ्फर किरमानी भी उसमें से एक है। वो किसी गिरोह का शहीद नहीं है, किसी कबीले का शहीद नहीं है, वो खुदा की बारगाह में शहीद है। बस हमें यह चाहिए कि हम जब भी शहीद की बारगाह में जाएं, चाहे वो कोई भी शहीद हो, तो अपने अमाल लेकर जाएं। वो शाहिद है, पसमानगान के उमूर का शाहिद है। वो चीख के कह रहा है मेरे अंजाम से कोई डरा तो नहीं, कोई खौफजदा तो नहीं हुआ, क्या मेरे रास्ते से हट तो नहीं गए। वो रास्ता क्या था? अगर मैं इस करिए की बात करूं, इस इलाके की बात करूं जिस इलाके में इस वक्त जलसा हो रहा है, मुजफ्फर इस इलाके से महदूद नहीं था, मगर मैं इस इलाके की बात करूं तो इस इलाके के अंदर बहुत बड़े बड़े वाकियात हुए। अल्लामा अब्बास कमेटी साहब इसके शाहिद होंगे क्योंकि वो भी इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, मुजफ्फर की जात से भी वाकिफ हैं, मगर आज उनकी तबीयत नासाज है और वो नहीं सुकनवरी कर रहे हैं। बस इसी इलाके के अंदर किसी को इस्लाम के खिलाफ अमल करने की जरूरत नहीं थी जब तक मुजफ्फर था। यह बात मैंने कह दी, मगर मैं चाहूंगा कि यहां पर इसके जवानान भी यहां मौजूद हैं, इसके फॉलोअर्स भी यहां पर मौजूद हैं, जानने वाले भी मौजूद हैं, वो ऐसा पैकर इखलास था, वो जवानों को शऊर देने वाला था। मैं अगर एक नारा लगाऊं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वाकईतन इस बात से, जो इसमें बैठे हुए लोग हैं, इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं हैं, और नारे का जवाब आप दीजिए ताकि मुझे एहसास हो कि मैं जो कह रहा हूं कि मुजफ्फर उनमें से एक था, तो इसका जवाब ऐसे ही होना चाहिए। वो अफराद जो जानते नहीं थे भले वो जवाब ना दें। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा नारा हैदरी, नारा हैदरी, यजीदिया। यजीदियत, हुसैनियत, हुसैनियत। ये जो हम नारे लगाते हैं ये सियासत नहीं है, ये अपनी तर्जुमानी कर रहे होते हैं। इस इलाके के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, इस मसाइल की तरफ नजर होनी चाहिए। उन अकाबरीन की जो मुजफ्फर को जानते हैं, मैं वो चेहरे देख रहा हूं जो मुजफ्फर के बे इंतहा करीब साथी हैं, वो यहां पे मौजूद हैं। मैं शुक्रगुजार हूं उनका भी कि वो यहां पे तशरीफ लाए और देख रहे हैं। बस जरूरत है इस अमर की कि वही दौर, क्या वो सुनहरा दौर था जब मुजफ्फर था, या आज की मुश्किलात हैं या नहीं है। आज सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इस इलाके के लोग आपस में ही, चाहे मोमिनीन हो या ना हो, तफरीके हो, मुश्किल में बटे में। ये इत्तेहाद कहां गया, ये कहां गया इत्तेहाद, इत्तेहाद किनके दरमियान, इत्तेहाद उनके दरमियान जो राय विलायत और इमामत को जानते हो, वो रहनुमाई कर सकते हैं। जो राय विलायत और इमामत को जानते ही ना हो, वो रहनुमाई कैसे करेंगे। बस इस राह पे चलने के लिए कुछ जुरत चाहिए। मुजफ्फर किरमानी एक मुतवस्सत घराने में पैदा हुआ है, कोई अमीर घराने में पैदा नहीं हुआ, मुतवस्सत घराने में पैदा हुआ। उसमें था क्या, उसने किसी हौज इल्मिया से तालीम हासिल नहीं की है, वो इसी तरह से जिस तरह आम जिंदगी बनाते हैं इस तरह बनाते हैं। इस तरह बहुत अजीम अजीम शोहदा है, मगर आज क्योंकि उसका दिन है इसलिए चंद लफ्ज में कह रहा हूं। बस उसने जो बात उसके दिल में थी जबान पर भी इसी तरह लाता था। वो दोगला नहीं था, वो मुश्किल में नहीं था, और जो बात करता था इल्लाहियत के साथ करता था, उसके अंदर वो खूबियां थी। बस खुदावंद ताला हमें भी उन खूबियों से नवाजे, और उसी रास्ते पे चलते हुए जो तोहफा उसे मिला है हमें भी दे। मैं तमाम शुरका का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा जो यहाँ पे तशरीफ आए और शहीद की बारगाह में बैठे। उस्मा कराम का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ लाए, और आखिर में मैं मौलाना अब्बास अमीन साहब से कहूँगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ और इसका इख्तिताम करें इस वारका का। खानदान ज़हरा पे बुलंद तर दुरूद पढ़ें।